हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 973। फिर से वही एक अजीब सी अंधेरी जगह, और वो कहां पर है ये वसुंधरा को समझ भी नहीं आ रहा है। लेकिन उसे पता है विक्रांत के रहते इधर उधर भागने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए वो अपनी ही जगह पर खड़ी हुई है। विक्रांत उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ देख रहा है। विक्रांत को शरीर के कुछ हिस्सों में चोट लगी हुई है, पता नहीं कैसे और कब ये उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं हो रही है, जिससे वो समझ गया कि जरूर उसने कुछ ऐसा किया है जो वो नहीं कर सकता, और इसीलिए उसे इतनी तकलीफ हो रही है। उसे दर्द भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इन सब दर्द को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए वो अभी कुछ और भी सोच रहा है। ठीक उसी वक्त पीछे खड़ी हुई बार वसुंधरा ने कहा, क्यों क्यों लेकर आए हो तुम मुझे यहां पर? जाने दो मुझे यहां से। क्यों फिर से मुझे यहां पर लेकर आ रहा है? इससे अच्छा तो तुम मुझे जान से मार दो, मुझे इस तरह से जिंदा नहीं रहना। पीछे मुड़कर वसुंधरा की तरफ देखते हुए विक्रांत ने गुस्से में कहा, फिर से वही बकवास शुरू हो गई तुम्हारी। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता, और इसीलिए तुम बार बार ये बात बोलकर मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। क्यों नहीं मार सकते? तुम मुझे छोड़ भी नहीं रहे हो, जान से मार भी नहीं रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? क्यों लाए हो मुझे यहां पर? कम से कम यही बता दो, इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगी। वसुंधरा ने एकदम परेशान होकर दोनों हाथों से अपने सिर के बालों को पकड़ लिया, और बोलते बोलते वो एकदम ही रोने लगी और रोती रोती घुटने के बल वहीं जमीन पर बैठ गई। चुप करो, रोना बंद करो, और क्यों जाना है तुम्हें? ये सब कुछ जान भी लोगी तो क्या मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा? इतने सालों से मैं इस दिन का इंतजार किया है, और अब वो दिन इतना करीब है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से निकल जाओ? कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि ये बेकार की कोशिश करना छोड़ दो। विक्रांत ने उसकी तरफ देखकर एकदम सीधा जवाब देते हुए कहा। लेकिन विक्रांत की बात सुनकर भी वसुंधरा का रोना बंद नहीं हुआ। वो लगातार रोती जा रही है, और उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं, और अभी उसे ये भी पता नहीं चल पाया कि देवांग जिसने उसकी मदद की थी वो आखिर क्या चाहता था, और क्या सच में वो उसकी मदद कर रहा था या फिर कुछ और उसका मकसद था। जैसा कि विक्रांत ने कहा, ये बात सोचते हुए वो बहुत परेशान हो गई है। अब उसे महल, अपने माता पिता चंद्रिका सबकी बहुत याद आ रही। इतने दिनों से वो उन सबसे दूर है, और उसे लग रहा है कैसे भी बस वो महल वापस पहुंच जाए। लेकिन साथ ही उसे पता है विक्रांत के यहां रहते ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और वो उसे जाने नहीं देगा। यहां तक अगर कोई से बचने की कोशिश भी करेगा तो भी विक्रांत के रहते वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकता, और उसका भाई हाल होगा जो अभी विक्रांत ने देवांग का किया। और विक्रांत बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये बात भी अब तक वसुंधरा को समझ आ चुकी है। लेकिन आखिर वो उससे क्या चाहता है, इस बारे में उसे अभी भी कुछ पता नहीं है। विक्रांत ने एक बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन तक नजर नहीं आ रही है। वसुंधरा उसके सामने इस तरह से फूट फूट कर रो रही है, लेकिन विक्रांत को इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो सिर्फ अपने मकसद के बारे में सोच रहा है जिसके लिए उसने इतने सालों तक प्रतीक्षा की है। इसी बीच विक्रांत के जख्मों में बहुत ही तेज जलन हुई, और दर्द भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चोटें उसे कब और कैसे कहां पर लगी, क्योंकि जहां तक उसे याद है देवांग से उसका सामना हुआ, लेकिन देवांग ने उस पर कोई भी हमला नहीं किया। शायद वो कर ही नहीं पाया क्योंकि वो खुद को बचाने में लगा हुआ था। विक्रांत ने पहले ही उसे चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया था। विक्रांत के हाथ के बाजू पर एक गहरा जख्म लगा हुआ है जिससे खून निकल रहा है, और दूसरा उसकी पीठ पर कहीं है, लेकिन उसे पीठ वाला जख्म नजर नहीं आ रहा। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ किया और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचा, तो वो इस तरह से बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और वसुंधरा की तरफ देखकर अपना हाथ हवा में उठाया, और उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकली जो जैसे ही वसुंधरा के माथे पर जाकर लगी, वसुंधरा की आंखें एकदम ही बंद हो गईं और वो वहां जमीन पर ही लुढ़क गई। अपनी शक्तियों के प्रयोग से वहां से जाने से पहले विक्रांत ने वसुंधरा को बेहोश कर दिया, जिससे कि वो दोबारा वहां से बाहर निकालने की कोई भी कोशिश ना कर पाए, और फिर विक्रांत खुद तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने तुरंत ही उस जगह को भी पूरी तरह से जादू के घेरे में बांध दिया, और बाहर निकलने पर अब वो जगह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, और ऐसा लग रहा है वहां पर कोई भी जगह है ही नहीं। वो जगह एकदम खुली हुई मैदान की तरह से लग रही है, लेकिन ये सब सिर्फ एक भ्रमजाल है जिसे कि विक्रांत ने बनाया है इसलिए कि कोई भी वसुंधरा तक ना पहुंच पाए। आह,
क्या हो रहा है मुझे? ये इतनी जलन क्यों हो रही है? मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी, तो फिर ये खून? अपने बाजू पर हाथ रखे हुए विक्रांत को जैसे ही अपने हाथ में कुछ गीला चिपचिपा सा महसूस हुआ, उसने तुरंत ही अपने हाथ को चेहरे के सामने करके देखा तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये समझना बहुत ही जरूरी था, इसलिए फिर वो तुरंत ही वहां से एकदम ही गायब हो गया और अपने मन में सोची हुई जगह पर पहुंच गया। दूसरी तरफ, फिर से हार गए तुम देवांग, तुम उसे जीत नहीं सकते, ये बात तुम मन क्यों नहीं लेते हो? इसीलिए ही हम में से कोई बेकार का प्रयास नहीं करता है। देवांग के चारों तरफ उसके जैसे ही कपड़े पहने हुए 3 से 4 लोग खड़े हैं और उनमें से एक ने कहा तो देवांग ने अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, जहां पर अब तक आंसू भरे हुए थे और गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हैं। अपने साथी की ये बात सुनकर देवांग को गुस्सा और भी ज्यादा आ रहा है। तुम सब लोग कायर और डरपोक हो, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं। मैं नहीं डरता हूं शैतान विक्रांत का सामना करने से, और उससे पहले मैं उन सारी शक्तियों को हासिल कर लूंगा। उसे कभी भी उन शक्तियों तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर उसे वो शक्तियां मिल गई तो फिर वो काला साम्राज्य बसाएगा और बाकी सारी शक्तियों को वो खत्म कर देगा जो उसके अधीन नहीं होगी। देवांग ने अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए एकदम मजबूती से कहा और उसकी बात सुनकर बाकी सारे लोगों ने बेबसी से बस इधर उधर अपना सिर हिलाया। और फिर वो सारे लोग एकदम करीब आए, उन चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ देवांग के बीच आए और वो देवांग को लेकर वहां से गायब हो गए। कहानी जारी रहेगी।